बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद पेश है मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, और साथ ही साथ अपने मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में सुबह खैर भी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भी पेश करते हैं, और आप सबको नसीब ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है?
बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे नाजरीन, हमारे प्यारे प्यारे नाजरीन कैसे हैं? सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी प्यारी सी सुबह का आगाज अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से कर लिया होगा। इसी वजह से आपका पूरा दिन खुशियों और खुशखबरियों से इंशाल्लाह 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 भरा रहेगा।
बिल्कुल, और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि इस खूबसूरत से प्रोग्राम के साथ आपके दिन को और भी बेहतरीन, खूबसूरत और एनर्जी से भरपूर भी बनाए।
बिल्कुल ऐसा ही है। और हफ्ते का मौजू हमारा चल रहा था, आज उसका आखिरी दिन है।
जी हाँ, कौम की फलाह बहबूद में, यानी एक जो है मीडिया का, मीडिया का किरदार किस तरह से रहता है और वो क्या कर सकता है मीडिया यानी एक कौम की तरक्की के लिए।
बिल्कुल, और उसका आज आखिरी दिन है।
बिल्कुल,
और आज उसका हम निचोड़ भी इंशाल्लाह निकालेंगे,
इंशाल्लाह किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे।
इंशाल्लाह
इंशाल्लाह
चलेंगे प्रोग्राम नसीम जिंदगी के तोहफे की तरफ।
नहीं खुर्रम, आज थोड़ा सा जो है फॉर्मेट चेंज हो गया
है।
आज हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और उसके बाद जो है नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे।
सही है
जी नाज़रीन। जी अजीज नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीमे ज़िंदगी, जो आपका अपना प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को अपना बनाने के लिए और इसमें शिरकत करने के लिए मैं आपको जल्दी से रास्ते बता देती हूँ। व्हाट्सएप और वाइबर, और इसके अलावा उसके नंबर जो है आप स्क्रीन पर देखेंगे, और इसके अलावा facebook.com/sutmorningshow जो है हमारे फेसबुक के सफ़े का एड्रेस है। और उन तमाम नाज़रीन का एक बार शुक्रिया अदा करती चलती हूँ जो प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक होते हैं, अपनी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। एक और रास्ता है, वो काम खुर्रम का है, जो आपको बताएंगे।
जी बिल्कुल, स्टूडियो के नंबर भी आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे और उस पर कॉल कर सकते हैं आप, और उसके साथ कॉल करके आप अपना नंबर भी हम लोगों को दे सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों को कॉल बैक करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मेहमानों के बारे में आपको बताते चलें, हमारे जो आज के मेहमान हैं, जो हमारे हफ्ते के मौजू जो कि चल रहा था कि मीडिया का किरदार कौम की फलाह बहबूद में, उसका निचोड़ निकालेंगे, उसका एक नतीजा निकालेंगे। डॉक्टर अब्दुल रहीम दुरानी साहब हमारे इंशाल्लाह स्टूडियो में मौजूद होंगे। और रुबाब कहाँ पर लेके जाएंगे हमें?
मैं नाज़रीन को और आपको खुर्रम ले चलूंगी अमरीका, जहाँ पर डॉक्टर यासर अंद्राबी हमारे साथ मौजूद होंगे। टिप की दुनिया में भाई क्या काम हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो हमें इससे अपडेट करेंगे।
जबरदस्त,
हमारा आज का प्रोग्राम आप मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ में आपकी उंगलियां जो है वो आपके मूड का इलाज कर सकती है, ये मेरा आज का मौजू रहेगा।
जबरदस्त, चल देखते हैं कि रुबाब क्या आप लोगों के लिए लेके आएंगे।
बिल्कुल,
तो
अब वक्त हुआ है तोहफे का।
अच्छा, अब वक्त हुआ तोहफे का, मैं यही सोच रहा था तोहफा कहाँ गुम हो गया हमारा।
जी, अब वक्त हुआ है तोहफे का, तो साथ मिलकर देखते हैं और सुनते हैं एक हदीस, एक फरमान, और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
हमारे साथ रहिएगा।
हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तमाम गुनाहों की जड़ दुनिया परस्ती है।
मोहतरम नाज़रीन, फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, और इस दुआ के साथ जो हम हर रोज करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस फरमान पर भी अमल पैरा होने की पूरी पूरी कोशिश करें, इंशाल्लाह और आमीन। जी खुर्रम, वक्त हुआ है हम चलेंगे अमरीका, जहाँ पर डॉक्टर यासर अंद्राबी साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम डॉक्टर साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं, आपको प्रोग्राम नसीमे ज़िंदगी में खुश आमदीद भी कहते हैं, और साथ ही साथ अपना सवाल भी पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप तिब की दुनिया से हमारे लिए क्या लेकर आए हैं?
जी बहुत शुक्रिया रुबाब, मैं आपकी और नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। तो आज मेडिकल टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात करना चाहें तो मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक नई जो रिसर्च की गई है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इसकी लत ये है कि ये एक बहुत ही जो मुहिम और ज़रूरी मसला है जिसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए हमें, और वो है जो हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, कोको कोला पेप्सी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो एक नई रिसर्च की गई है उसमें बताया गया है कि देखिए कोको कोला वगैरह इन ड्रिंक्स का हमें जो इनके साइड इफेक्ट्स है उसका तो हम सबको पता है कि जैसे ओबेसिटी है या डायबिटीज वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो तो हम सबको पता है। लेकिन जो एक नई रिसर्च की गई है जो हाल ही में जॉन्स हॉपकिंस जो यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया, उन्होंने बताया कि ऐसे ड्रिंक्स पीने की वजह से जो है आप में कैंसर के रिस्क बढ़ सकते हैं।
अच्छा,
तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है जो इन्होंने क्या किया कि जितने भी अमेरिका में पिछले 7 साल से इन्होंने एक डेटाबेस निकाला जिसमें देखा कि ये अमेरिका में ऑन एन एवरेज लोग कितनी जो है कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं। और देखिए कोल्ड ड्रिंक्स इन्होंने जिस पे रिसर्च की है वो खास जो ब्राउन कलर की कोल्ड ड्रिंक्स होती है जैसे कोका कोला है, थम्स अप है, पेप्सी वगैरह है, तो देखा गया है कि ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स में जो है इनके उस ब्राउन कलर के लिए एक जो है एक केमिकल यूज किया जाता है जिसकी वजह से इन्हें वो ब्राउन कलर आ जाता है। अब ये ब्राउन कलर वाला केमिकल जो है इन्होंने रिसर्च की चूहों पे देखा कि ये कार्सिनोजन है, यानी इससे जो है कैंसर हो सकता है।
अच्छा,
अब मसला ये है कि अब इनको ये देखना था कि अगर ये लोगों में कितना यूज किया जा रहा है अभी, तो इन्होंने जो ये रिसर्च की इसमें इन्होंने देखा कि तकरीबन इन्होंने 110 सैंपल लिए डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स लिए कोका कोला पेप्सी वगैरह के, तो देखा कि एक प्रोडक्ट है जिसका नाम 4-methylimidazole है जो कार्सिनोजन है, तो इसकी लेवल जो है 3 माइक्रोग्राम से लेके 350-400 माइक्रोग्राम तक पाई जा सकती है एक कैन में। तो इन्होंने जो फाइनल जो रिजल्ट आया और उसके उस रिजल्ट के मुताबिक अगर 30 माइक्रोग्राम से ज्यादा मिकदार ये किसी भी कोल्ड ड्रिंक में हो तो वो एक जो है कैंसर रिस्क बढ़ा सकती है।
माजरत के साथ कितना, यानी अब मसलन जैसे जिस तरह आप बता रहे हैं हर कैन में इतनी इसकी मिकदार है, तो इसका मतलब ये तो बड़ी तेजी से कैंसर की तरफ हम लोगों को लेके जा सकता है।
जी बिल्कुल, देखिए यही तो मसला है कि अब देखिए जब हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की कोको कोला की, तो इसपे तो कोई वो बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं देता है। अब बच्चे पी रहे हैं, अब हमारी कंट्रीज में आप देख लें तो बच्चा 3 साल का हो तो हाथ में वो जो कोक लेके घूम रहा होता है और माँ बाप भी बड़े इफ्तिखार से बोलते हैं कि हमारा बेटा जो है पेप्सी पी रहा है, कोक पी रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो दरवाजे जो है एक जहर है जिसमें जिसकी वजह से उनमें कैंसर हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने बताया ये पूरी जो है हमारा पूरा मुआशरा, हमारा जो जैसा हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है वैसे कोल्ड ड्रिंक्स की जो है यूज बढ़ रही है कॉलेजेस में, स्कूल्स में और घरों में भी, तो जिसकी वजह से ये बहुत जरूरी है ये जानना कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि इन्होंने बताया 30 माइक्रोग्राम लेवल जो है एक खतरनाक लेवल है, तो हाल ही में कैलिफोर्निया जो एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लॉ पास किया है जिसके मुताबिक कैलिफोर्निया में जो भी कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस हो रही है, जो भी पेप्सी को कोकोला प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उनको अपनी बॉटल पे लिखना है कि अगर 4-methylimidazole जो ये रंग है अगर इसकी मिकदार 30 माइक्रोग्राम से ज्यादा है, तो जैसे हम सिगरेट्स पे सिगरेट के डिब्बों पे लिखते हैं या डिब्बियों पे लिखते हैं कि सिगरेट पीने से जो है कैंसर हो सकता है, उसी तरह से उनको उस बॉटल पे लिखना पड़ेगा कि इस बॉटल में जो ये पेप्सी वगैरह है ये पीने से आपके कैंसर के रिस्क बढ़ सकते हैं। तो एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट स्टेप उन्होंने उठाया है वहां पे, और जो ये हाल ही में स्टडी होगी इसका मकसद ये है कि ऑल ओवर जो पूरी कंट्री में जो है ये एक लॉ पास किया जाए जिसकी जिसमें पहले तो आप जो मॉनिटर करें देखें कि ये इसकी मिकदार कितनी है इस कंपाउंड की, इस कार्सिनोजन की, और दूसरा ये कि अगर वो उस मिकदार से ज्यादा है तो उनको लोगों को आगाह करना है कि देखिए ये पीने से आपके कैंसर के रिस्क बढ़ सकते हैं। अब मैं जिस बात से ज्यादा परेशान हूँ वो ये है कि हमारी कंट्रीज में क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान में क्या होगा, जहाँ पे तो वैसे ही जो कार्सिनोजन हमें पता है उस पर कुछ नहीं किया जाता, और अब पेप्सी कोक वगैरह जैसी बड़ी कंपनीज पे कब तक जो है कोई जो है कुछ किया जा सके। तो अब अगर आप मुझसे पूछे तो मैं लोगों से इस लेवल पे इतना ही कह सकता हूँ कि सबसे पहला मसला ये है कि जानना कि ये चीज खतरनाक भी हो सकती है, अगर खासतौर पे इसकी मिकदार आप बढ़ाएं, यूज करें, ज्यादा यूज करें तो ये खतरनाक हो सकती है। तो जब तक अब हमारी गवर्नमेंट्स कुछ करे या हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ करे, उससे पहले लोगों को खुद कुछ करना चाहिए, इसको इसकी कंजप्शन कम करें, खासतौर पे जो बच्चे हैं और जो नौजवान हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कम से कम जो है इन्हें यूज करें। और पहले स्टेज में एटलीस्ट जो है ब्राउन कलर की कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे जो जो ब्राउन होते हैं जैसे कोको कोला है, पेप्सी वगैरह, उनको ज्यादा मसरफ ना करें, उनके बदले फिलहाल रिप्लेस करें और हतल इम्कान जो है बिल्कुल यूज ही ना करें, क्योंकि इसके बाकी असरा तो हमें पता है, जो इसमें जितना शुगर लेवल है उसकी वजह से जो जो मोटापा और डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं वो तो सबको पता है, तो अब ये कैंसर का एक नया रिस्क बढ़ गया। दूसरा मसला ये है कि ये जो कंपाउंड है, ये जो रंग करने वाला जो कंपाउंड है, ये देखा गया है कि ये बस कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स में कहते हैं 25% जो है ये पाया जाता है, लेकिन बाकी फूड प्रोडक्ट्स में भी ये पाया जा सकता है, जैसे चॉकलेट्स या कैंडीज हैं या ब्राउन ब्रेड है, या इसके अलावा जैसे कुछ सॉस है, जैसे बारबेक्यू सॉस होता है या आपका सोया सॉस होता है, जो वो डार्क कलर के सॉस आते हैं, तो उनमें भी जो है इस कंपाउंड का इस्तेमाल शायद किया जा रहा है, और लेकिन ये अभी पता नहीं है कि कितनी लेवल है, तो ये जाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कितनी लेवल है और ये कितना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और अब आगे जो रिसर्च बढ़ेगी वो ऐसा होगा कि जो जो जहाँ जहाँ ये कंपाउंड इस्तेमाल हो सकता है, जैसे फर्ज करें आप जो खवातीन बालों में जो रंग लगाती हैं, तो अगर उसमें ये कंपाउंड हो तो ये स्किन के जरिए जो है उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर जो है कैंसर की चांसेस बढ़ा सकता है। तो मेरे ख्याल से पहला 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 मकसद हमारा ये होना चाहिए कि लोगों को आगाह होना चाहिए कि ऐसा कुछ है, और दूसरा जो है हद्दुल इम्कान जो है कोशिश करें फिलहाल इसे कम मसरफ करें, जब तक हमारी कंट्रीज में रिसर्च होगी, देखा जाएगा वहां पे कितनी लेवल है और उसके बाद ही जो है कुछ कर सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े अरसे से ये ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक इस्तेमाल की जा रही है, क्यों इतना टाइम लगता है ये चीजें जानने में? एक अरसा था कहते थे कि कोका कोला में पता नहीं कुछ ऐसा केमिकल्स डाले जाते हैं जो नशावर होते हैं, खैर वो भी एक बार गुजर गई बात, अब इतने अरसे के बाद इस बात का सामने आना, फिर जैसे आप कह रहे हैं कि चॉकलेट्स में भी, क्योंकि ये सारी चीजें कलर्ड हैं, वैसे भी बंदे को शक होता है कि यार ये जो रंग है ये कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है इतने तो ये कंपनीज वाले जो इस तरह की चीजें बनाते हैं इतने अच्छे नहीं है कि 100% वही प्योर जो है चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाए, 100% वही ब्रेड जो टोस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे ही असली उसमें जो है आटा इस्तेमाल किया जाए, तो ये इतना टाइम क्यों लग जाता है डॉक्टर साहब?
देखिए पहला मसला ये है कि जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम एक लंबे अरसे वाली प्रॉब्लम है, मसलन जैसे हमारा नजला जुकाम नहीं है जो रातों रात हो जाए, कैंसर होने में कम से कम 10 से 15 साल इंसान की लाइफ में लग जाते हैं जब तक वो पता चले कि किसी में कैंसर हो गया, तो इसलिए जो है आमतौर पर लोगों का ये जो है ये जानना कि क्या कोई कंपाउंड कार्सिनोजन हो सकता है, कैंसर जा हो सकता है, बहुत सख्त है। लेकिन अब मैं बताता हूँ, देखिए हाल ही में क्या हो गया कि जैसे हम सब जानते हैं हमारी कंट्रीज में अमेरिका में जो है कैंसर वगैरह जो है इनकी जो प्रेवेलेंस है, इंसिडेंस है, वो बढ़ रही है और बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो एक कॉज है उसमें। अब लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आ गई है, जैसे 20 साल पहले हमारी कंट्रीज में कितने लोग दिन भर जो है कोक वगैरह का इस्तेमाल करते थे, और अगर हम उस जमाने का देखें तो उनकी लाइफ भी कितनी बेहतर होती थी, कितने वो जो है तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन आप कंपेयर करें आजकल की जनरेशन में, देखिए कैंसर की रिस्क कितनी बढ़ रही है और लोगों में कितने कैंसर हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है सब ये जानने की कोशिश करें क्या क्या जो है हमने चेंजेस लाई है अपने लाइफस्टाइल में, उन और उन चेंजेस की वजह से और उन क्या चेंजेस है उनमें, और या क्या पॉसिबिलिटीज है जिनकी वजह से हमारे में लाइक बीमारियां हो रही है, कैंसर हो रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल से काफी पैसा खर्च किया जा रहा है ऐसी चीजों पे कि वो देखें कि जो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है या बाकी भी जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमारे सेहत पे क्या असर है, जैसे पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है फ्रूट्स पे, जो हम हमेशा सोचते थे कि जो मेवाजात है फ्रूट्स वगैरह है वो काफी जो है हेल्दी है, लेकिन अब फिर उन पे पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, और फिर वो फिर खुद एक कार्सिनोजन बन जाते हैं। अब अभी अमेरिका में जो है ऑर्गेनिक फूड काफी मशहूर है, उसका मतलब ये है कि ये ऐसा फूड होता है जिसमें ना कोई और जो है पेस्टिसाइड यूज किया गया होता है, और इसकी कीमत जो होती है वो नॉर्मल फर्ज करें एक सेब अगर 1 रुपए का है तो जो है ऑर्गेनिक सेब 4-5 रुपए का होगा, तो इस तरह से वो 4-5 बराबर कीमत पे वो उसे
जी
बेचते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें आप पता है कि जो नॉर्मल हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो जो है कार्सिनोजन है, तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें पता चलेंगी। लेकिन जो 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 काम हम कर सकते हैं इस लेवल पे वो ये है कि ये जाने कि हमारा ओरिजिनल लाइफस्टाइल क्या था, हम पहले कैसे जीते थे, हम पहले
सही
कैसे रहते थे, और
जी
उसके जो है फवाइद जो थे, जो हमारे दीन में भी कहा गया है, जो जैसे सादा जिंदगी हम हमेशा जीते थे और उसके फवाइद जो हमारी जिंदगी में क्या थे, वो तो
सही सही
आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर अंद्राबी,
जी
अमेरिका से आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ी अहम खबर
बिल्कुल
हमारे नाजरीन को आपने दी और एक अलर्ट भी था, और मेरे ख्याल में बहुत अहम नुक्ते की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया है,
बेशक
हमें चाहिए कि इसकी तरफ गौर करें, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि टाइम लग जाएगा बड़ा कि हमारी हुकूमतें या बहरहाल हेल्थ मिनिस्ट्रीज जो हैं वो जैसे कि बहुत टाइम लगा कि वो सिगरेट के डिब्बे के ऊपर लिखवाना शुरू करें और उसके ऊपर तस्वीर लगाई जाए फेफड़ों की, कैंसर के फेफड़ों की हालत की, तो इसी तरह
बिल्कुल
बहुत टाइम लगेगा कि ये जो सोडा ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, इनके ऊपर कुछ लिखा जाए। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि हम लोग अगर चाहते हैं हमारी ज़िंदगी बेहतर हम लोग गुजार सकें तो इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करें।
बिल्कुल अपनी मदद आप जो है हम पहले खुद
बिल्कुल
करें। बिल्कुल खुर्रम, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और ये ऐसे अहम नुकात है जिस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। है खुर्रम, अब वक्त हुआ है जान बनाने का,
अच्छा वर्जिश
वर्जिश
करने का,
करने का
ठीक
है।
है
जी हाँ, और साथ
आप
में
डर गई,
कर
मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने डरा दिया आपको।
जी
ठीक है
क्योंकि
चलिए
मेरी खुद
वर्जिश
की ये
कर
आदत
लेते हैं।
थी। बिल्कुल सही
ठीक
कहा
है
खुर्रम ने।
ये तो सारे
जी
पीते हैं, हमारा जो सोडा
जी
ड्रिंक है
नहीं
वो हर
बिल्कुल ये
घर में
बिल्कुल
इस्तेमाल
ठीक नहीं है, और
किया
बहुत सी और
जाता
भी बीमारियां होती हैं। खैर नाज़रीन, अब इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए साथ मिलकर देखते हैं हमारे वर्जिश का हिस्सा प्लाटीज, और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
हमारे
हमारे
साथ
साथ
रहिएगा।
रहिएगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین السلام علیکم، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم پہلو کے بل لیٹ کر کی جانے والی ایک ورزش آپ کو سکھائیں گے، آپ ہم جو نکات بتاتے ہیں ان پر پوری توجہ رکھیے گا۔ تو دوستو تیار ہو جائیے آپ لوگ۔ ناظرین اسی طرح کا ایک اسٹیپ ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں جس میں ایک پیر موڑا جاتا تھا، اس اسٹیپ میں ہم دونوں پیر موڑیں گے، یعنی اس اسٹیپ کے مشابہ ہے لیکن اس میں ایک پیر موڑا جاتا تھا، اس میں ہم دونوں پیر موڑیں گے، اور ہاتھ کو آپ سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں چاہے تو سر کے نیچے موڑ بھی سکتے ہیں۔ نچلا پیر اوپر کے جسم سے 90 سے زیادہ ڈگری کے زاویے پر ہے، اور اوپر کا پیر نچلے پیر پر رکھیں گے، اور کوہنی کو زمین پر رکھیں گے، 90 درجے کا زاویہ ہونا چاہیے اس کا، کیونکہ اسی ہاتھ پر آپ اپنا زور ڈالیں گے، اسی سے بیلنس بنائیں گے۔ اس حالت میں سانس لیں گے، اور سانس چھوڑتے ہوئے پیروں کو تھوڑا سا زمین سے اوپر اٹھائیں گے، زمین سے 2-3 سینٹی میٹر پیروں کو اوپر اٹھائیں گے، بہت زیادہ نہیں، اور پھر پیروں کو نیچے رکھ دیں گے، سانس لیتے ہوئے پیروں کو اوپر لائیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیروں کو نیچے، پھر سانس چھوڑتے ہوئے اوپر روکیں گے، اور یہیں پر ہم گھٹنوں کو آگے اور پیچھے کی طرف لے جائیں گے، دیکھیے سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے گھٹنوں کو موڑیں گے، دیکھیے اس حالت میں گھٹنے موڑ رہے ہیں لیکن پیر زمین پر لگے ہوئے ہیں، سانس لیتے ہوئے گھٹنوں کو زمین پر لگانے کی کوشش کریں گے، پیر اوپر ہیں، پچھلی حرکت کے بالکل برعکس، سانس لیں گے، ایک بار پھر کرتے ہیں، سانس لیتے ہوئے پیروں کو بیچ میں لائیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے پیر زمین پر، سانس لیتے ہوئے بیچ میں، اور سانس چھوڑتے ہوئے گھٹنے زمین کی طرف، پیر زمین پر رکھ دیجئے۔ تیسرے مرحلے میں ہم جو باتیں بتا رہے ہیں اس کو غور سے سنیے۔ اس مرحلے میں ہم پیروں کو کھولیں گے اور اس طرح سے کہ پیروں کو اٹھائیں گے اور پھر انہیں ایک دوسرے سے کھول دیں گے، گھٹنے زمین پر لگائیں گے، اور دیکھیے پیر زمین سے اٹھے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں پیروں کو کھولیں گے، देखिए दोनों पैर एक दूसरे से लगे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि तलवे मिले, बल्कि दोनों पैर एक दूसरे से मिल जाएं तो भी ये काफी है। तो शुरू करते हैं, देखिए पैर खुल गया और पैर बंद हो गया। तो दोस्तों के साथ ये स्टेप करते हैं, सांस लेते हुए पैर ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने जमीन पर, इसी हालत में सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों को खोल देंगे, सांस लेंगे और पैरों को बंद करेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों पैर खोल देंगे। एक बार फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पैर खोलेंगे, पैर बंद कीजिए। देखिए मैं अपने दोस्त हामिद के साथ आपको ये स्टेप बताता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने बताया, इस स्टेप में शाने बिल्कुल जिस्म की सीध में होंगे, ना पीछे की तरफ होंगे और ना आगे की तरफ, बल्कि बिल्कुल बीच में जिस्म की लाइन में होंगे। और इसी तरह से कूल्हे भी ना आगे होंगे ना पीछे होंगे, बल्कि जिस्म की सीध में होंगे। और जिन लोगों को कमर की तकलीफ है वो पेट को अंदर की तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि पेट जो है उसी से आप अपने जिस्म की हरकत को बैलेंस करते हैं। तो पेट का काफी अहम किरदार है इस मरहले में। तो मैं अपने दोस्तों के साथ ये स्टेप आपको दिखाता हूँ। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, सांस लेंगे और पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पैर को घुमाएंगे, पैर के पंजे जमीन पर हैं और घुटने मुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा मुड़ने की जरूरत नहीं है, और सांस छोड़ते हुए घुटने जमीन पर टिकाएंगे और इस मरहले में पैर जमीन से उठ जाएंगे। इसी हालत में सांस लेंगे और पैर को खोल देंगे सांस छोड़ते हुए, और पैर बस मिले होने चाहिए, उन्हें बहुत ज्यादा चिपकाने की जरूरत न कीजिए। सांस छोड़ते हुए पैर खोलिए, एक बार फिर सांस लेंगे और पेट अंदर की तरफ होना चाहिए, सांस छोड़ते हुए पैर खोलिए, सांस लेते हुए पैर बंद कीजिए। तो नाज़रीन हम आपको यहीं पर खुदाफिज़ कहते हैं। मैं ये स्टेप एक बार और करके आपको दिखाता हूँ। हमें उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको ये पसंद आया होगा। एक हाथ सर के नीचे और ऊपर की तरफ और दूसरा हाथ जमीन से लगा हुआ, पैर को ऊपर ले आएंगे, नाक से सांस लेंगे और पेट अंदर की तरफ रहेगा, सांस लेते हुए पैर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटने बीच में।
जी मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे वर्जिश के हिस्से के साथ आपने वर्जिश भी की होगी। और अब नसीमे जिंदगी में वक्त हुआ है हमारे गुफ्तगू के हिस्से का, जहां खुर्रम हमारे मोहतरम मेहमान के साथ आप सबका इंतजार कर रहे हैं। जी खुर्रम।
बहुत शुक्रिया रुबाब जी, बिल्कुल शुक्रिया। आप लोगों ने जो है वर्जिश का हिस्सा भी दिखाया, थोड़ा हम घबरा गए थे डॉक्टर यासर अंद्राबी की गुफ्तगू सुन के। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुलरहीम दुरानी साहब स्टूडियो में नाज़रीन मौजूद हैं, और जैसे कि हमने आपको बताया था गुफ्तगू करेंगे वो हमारे साथ हमारे हफ्ते के मौजू के सिलसिले में, जो कि चल रहा है मीडिया के किरदार हमारी जिंदगियों में, हमारी फलाह बहबूद के लिए, मुल्क की कौम की फलाह बहबूद के लिए कितनी अहमियत रखता है। हमारे हमने पूरा हफ्ता इस मौजू पर बात की, आज डॉक्टर साहब से इसका नतीजा निकलवाते हैं। डॉक्टर साहब सलाम अर्ज करता हूँ।
वालेकुम सलाम,
कैसे हैं डॉक्टर साहब?
अल्हम्दुलिल्लाह,
सबसे शुक्रिया टाइम निकाला आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, मीडिया जो है मोबाइल के जरिए हो, टीवी के जरिए हो, सेटेलाइट के जरिए हो, अखबार के जरिए हो, कुछ भी हो, बड़ा अहम किरदार हमारी जिंदगियों में दे रहा है। उसकी एक वजह यहाँ मैं शुरू में बताता चलूँ वो ये कि पहले हम लोग बाहर जाते थे, लोगों से मेल जोल होता था, दोस्त आते थे, दोस्तों के घर जाना, ऑफिस जाना, मुलाकात करनी। अब ये हो गया कि वो जो एक आध बार हफ्ते में बाहर जाना था वो भी खत्म हो गया, घर में बैठ गई, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, मुख्तलिफ तरीकों से बातचीत चली। तो एक जो चीज़ हमें बाहर की दुनिया से कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है वो हमारा मीडिया है।
बिल्कुल बिल्कुल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके नाज़रीन को सलाम अर्ज करता हूँ। वाकया ये जो आप लोगों ने मौजू इंतखाब किया है बहुत अहम है, क्योंकि जैसा कि आपने अर्ज किया हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत जुड़ा हुआ मौजू है और चारा नहीं है इसके अलावा।
ठीक,
तो अब ये है कि वो मंतिक में एक मकूला है, एक कानून है, कहते हैं कि यूरफुल अशियाए बे अज़्दादहा, यानी हर चीज़ को आप उसकी ज़िद की वजह से जो है वो
अच्छा।
के जरिए पहचान सकते हैं। मसलन सूरज है, दिन है, तो आप रात को पहचान लेंगे तो दिन को भी पहचान लेंगे। तो इसी तरह अवाम की फलाह बहबूद के लिए मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है, इससे पहले हमें ये देखना होगा کہ میڈیا نے ہماری زندگی پہ کیا اثرات چھوڑے ہیں, ان کے منفی اثرات کیا ہے. جب ہم ان کے منفی اثرات کو جان لیں گے اس کے بعد ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان سے جان چھڑا کے یا خود اس میڈیا کو صحیح راستے پہ ڈال کے اس سے مفید مقاصد جو ہے استعمال کریں.
ٹھیک ہے, صحیح.
دیکھیں خود میڈیا جو ہے وہ مختلف شعبوں میں تقسیم ہے آج کل. اس میں جو ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے, اس میں جو الیکٹرانک میڈیا ہے, اس میں جو ہے یہ سماجی سوشل جو میڈیا ہے. تو یہ تینوں جو ہے اس وقت اس نے انسان کو, آج کے انسان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور ہر طرف سے اس کو فکر دیتا ہے.
ٹھیک ہے, آئیڈیاز دے رہے ہیں,
آئیڈیاز دے رہے ہیں کہ بقول ایک فلسوف کے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا ہمیں فکر تو نہیں دیتا, یعنی یہ نہیں کہتا کہ کس طرح جو ہے وہ, یہ نہیں کہتا کہ آپ فکر کریں, بلکہ یہ بتاتے کہ آپ کس طرح سوچیں, کیا سوچیں.
یعنی اس طرح مجبور نہیں کر رہا کہ ہم لوگ خود سوچیں,
خود
بارہ وہ جو ہمیں ایک وہ انجیکشن کے طور پہ آئیڈیاز ہمارے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں.
تو یہ جو یلغار ہے یہ اس وقت مختلف شعبوں میں ہو رہا ہے.
اچھا,
یہ خبروں میں, سیاست میں ہے,
ڈراموں میں
ہے, اقتصاد میں ہے, یہ جو ہے کلچر میں ہے, ثقافتی لحاظ سے ہر لحاظ سے جو ہے ہمارے اوپر یہ یلغار اس وقت جو ہے شروع ہے.
ٹھیک ہے,
خبروں میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے. جو آج کل کے جو میڈیا ہے, ریڈیو ٹیلی ویژن ہے, خاص کر اس میں زیادہ تر کردار جو ہے وہ پھر ٹیلی ویژن کا ہے, چینلوں کا ہے.
ٹھیک ہے,
تو انہوں نے اپنی ایک پالیسی بنائی ہوتی ہے, تین پالیسیاں ان کی ہے, ایک گیٹ کیپر کے نام سے ہے. گیٹ کیپر یہ ہے کہ دنیا میں تو ہر وقت حالات بدلتے رہتے ہیں اور حوادث رونما ہوتے رہتے ہیں. اب یہ کہ آپ کس موضوع کو عوام تک پہنچائیں, اس کا حق انتخاب کہ ہم کس چیز کو لیں. یعنی آپ گیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے حوادث میں سے ایک آپ انتخاب کرتے ہیں, تب وہ آپ جو ہے جا کے عوام کو دکھا رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
پھر اس کے بعد جو ہے اسٹریٹجی سیٹنگ ہے کہ ان موضوعات میں سے کون سا جو ہے اہم ہے, کس کو دبانا چاہیے, کس کو اجاگر کرنا چاہیے اپنے اہداف کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے.
ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد جو ہے ان کا فریمنگ ہے. فریمنگ یعنی کہ جو خبر ہم دے رہے ہیں وہ کس فریم سے لوگوں کو دے اور کس زاویے سے لوگوں کو دکھائیں,
منفی کر کے دکھائیں,
مثبت دکھائیں یا منفی دکھائیں. اور وہ مولوی کا ایک شعر ہے نا کہ پیشی چشمت داشتی شیشے کبود, لا جرم دنیا کبودت می نمود. یعنی تم نے جو ہے چہرے پہ کالا چشمہ لگایا ہوا تھا تو پوری دنیا جو ہے وہ آپ کو کالی نظر آ رہی ہے.
مولانا روم کا جو ہاں
وہ کہتے, تو یہ جو ہے پھر ہمیں عینک لگا کے دیتے ہیں آج کا جو میڈیا ہے کہ چیزوں کو ہم کس طرح دیکھیں, کس زاویے سے دیکھیں. تو اس میں جو ہے میڈیا کا جو ہے ٹکر بھی ہوتا ہے. جو مغربی میڈیا ہے اور جو مثلا اسلامی میڈیا ہے یا دشمن میڈیا, وہ ایک الگ زاویے سے آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں. اور آپ کو اگر اپنے عوام کو بچانا ہے, اپنی قوم کو بچانا ہے, ان کی ترقی و فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرنا ہے, تو وہ جو فریم ورک وہ دے رہے ہیں اس کو آپ نے توڑنا ہے.
ڈاکٹر صاحب, یہاں پر مجھے اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھائیں گفتگو, بڑے اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا, یہ بتائیں کہ یہ گیٹ کیپر, فریم ورک, اسٹریٹجی جو کہ بھائی کیسے کون سی نیوز کو اٹھانا ہے, کون سی خبر کو بتانا ہے, اور دوسرا پھر فریم ورک, اس میں کوئی ہمارے پاس ایتھکس موجود ہے, کوئی قانون موجود ہیں, یعنی قانون سے مطلب کہنے کے یہ کوئی کتاب موجود ہے کہ جس کو پڑھ کے ہم کہیں گے یار اس طرح دکھانا ہے, اس طرح نہیں دکھانا.
دیکھیں اس میں تو دو قسم کے قوانین ہیں, ایک تو میڈیا کا جو ہے یا مطبوعات کا اپنا ایک جو ہے بین الاقوامی قانون ہے.
اچھا,
کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا.
ٹھیک ہے,
ایک پھر ممالک کے اندر ان کے اپنے قوانین ہیں کہ ابھی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو بین الاقوامی جو قوانین ہے اس میں پھر جو ہے آپس کی جو ہماری تہذیب و تمدن ہے ان کا پھر آپس میں ٹکر آ جاتا ہے. مثلا مغرب کے جو قوانین ہیں ان کے لحاظ سے, ان کے فلٹر سے بہت سی چیزیں نکلتی ہیں جو مثلا مشرق یا اسلامی جو معاشرہ ہے اس میں جو ہے پھنس جاتی ہے, اور اس کے لیے اگر وہاں کے لیے مثبت ہے تو یہاں کے لیے وہ منفی کردار ادا کر سکتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو فلٹریشن ہے یہ ہونا چاہیے اور بہت ضروری ہے, کیونکہ جو میڈیا ہے وہ سرحدوں سے نکل چکا ہے.
ڈاکٹر عبدالرحیم دوران صاحب, بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کر دیا آپ نے, اس پہ ہم آگے آپ سے بات بڑھائیں گے. جی ناظرین, ڈاکٹر عبدالرحیم دوران صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا سرحدوں سے نکل چکا ہے اور مشرق اور مغرب کے فاصلے ختم ہو چکے ہیں. آئے یہ فاصلوں کا ختم ہونا किसी के फायदे में है या नुकसान में है, इस पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम चलेंगे वो आपके पास अभी।
बहुत शुक्रिया खुर्रम, बहुत शुक्रिया, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है आपकी। वैसे मीडिया का हमारे लिए ये फायदा है, व्हाट्सएप और वाइबर से हमारे नाज़रीन जो है हमसे राबते में रह सकते हैं, इसके अलावा facebook.com/ACT Morning Show पर भी वो हमसे राबते में रह सकते हैं। खैर नाज़रीन, यहाँ साथ मिलकर लेंगे एक मुख्तसर सा वक्त और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे हमारे साथ। जी मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, हमारी गुफ्तगू चल रही है डॉक्टर अब्दुलरहीम दुरानी साहब के साथ, कौम की फलाह बहबूद में मीडिया का किरदार, और हम फौरन लौटेंगे खुर्रम की तरफ। जी खुर्रम,
बहुत शुक्रिया रुबाब जी। बिल्कुल नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुलरहीम दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू हमारी यहाँ पहुंची थी कि मीडिया सरहदों से बाहर आ चुका है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में?
जी हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जब मीडिया सरहदों से बाहर जाता है और कोई उनमें हदूद और पाबंदी नहीं रहती, तो जब आग हमारे घर तक आती है, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, मीडिया को आग से तशबीह नहीं करनी चाहिए, लेकिन अच्छा। उसके जो मनफी पहलू है उसके लिहाज से कह रहा हूँ, तो आपको फिर क्या करना है, आपको जो है क्या फिल्टर लगाना है, क्या उसका वो तोड़ करना है। तो ज़रूरी चीज़ ये है, क्योंकि मीडिया की जो तरक्की है उसको तो हम रोक नहीं सकते,
ठीक है,
और वो मुस्बत पहलू में भी तरक्की कर रही, मनफी पहलू में भी। जैसे अभी रुबाब खानम ने बताया कि एक फ़ायदा ये है कि हम जो है इर्तिबातात हमारे आसान हो गए हैं, तो इर्तिबातात के साथ इर्तिबातात मनफी भी हो सकते हैं, मुस्बत भी हो सकते हैं। जो मुस्बत चीज़ें आ रही हैं उनके किनारे जो है आपके पास मनफी भी आ रही है,
ठीक है।
इन मनफी चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, और या ये कि ये जो वहाँ से मनफी चीज़ें आ रही है इनको किस तरह जो है फुर्सत में बदल लें, और इसको किस तरह अपने फ़ायदे की उसमें बदल लें,
ठीक है।
तो इसमें फिर जो है हुकूमतों पे सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो तो हुकूमतों पे पड़ती है,
अच्छा।
उनके जिम्मे है कि वो जो है मसलन जो मीडिया के लिए कवानीन वजा करे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो,
ठीक है,
कवानीन वजा करे, जिन चीज़ों को जो है वो रोक सकते हैं उनको रोके, जिनको फिल्टर कर सकते हैं उनको फिल्टर करें, और इसके बाद इन कवानीन के बाद दूसरा जो मरहला है वो फिर वालिदैन का है, असातिज़ा का है और बड़ों का है, कि वो किस तरह जो है अगर आप अपने बच्चे में मुस्बत और मनफी चीज़ और अच्छे और बुरे की तमीज़ उसको आप सिखाएंगे, तो ये ज़रूर जो है उस जो चीज़ें वो लेता है। देखो मीडिया जो है वो लोगों ने उसको दिल से तशबीह दी है, दिल में बास चीज़ें आती हैं और बास चीज़ें जाती हैं, यानी जैसे दिल का जो है वो खून का उसमें वो होता है सर्कुलेशन होता है,
ठीक है,
तो अगर आने वाली रगों में मसला हो तो भी जो है वो इंसान के बदन में मसला है, जाने वाली रगों में भी हो, तो इस तरह जो है आपका अपना जो मीडिया है उस पर आने के लिए उसमें कौन सी चीज़ आनी चाहिए, उस पर एक ऊपर से कंट्रोल होना चाहिए, नज़ारत होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए,
ठीक है,
और फिर जो है जब आपके पास आ रही है वो चीज़ें उनके लिए फिर वालिदैन और घर वालों का जो है वो ये फ़र्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को या मुआशरे को सिखाए कि या उलमा का इनमें बड़ा किरदार बनता है कि क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि देखें आपने सही कहा कि फिल्टर होना चाहिए, फिल्टर से मुराद आपकी यही है कि भाई सोच समझ के चीज़ दिखाई जाए, अगर आप मीडिया में बैठे हुए हैं आपके कुछ फराइज बनते हैं, आप हर चीज़ जो आपको नजर आ रही है वो उठा के नहीं दिखा सकते, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी मज़ा आजकल के मीडिया का तो यही है ना कि हर जगह से कोई भी इन्हें चीज़ मिलती है वो उठा के, वो बेशक जो है तालिबान का कमांडर हो या वो एक ऐसा आलिम हो जो तफरका फैला रहा है, वो ज़ाइबा नमक मिर्चें तो इसी की हैं, और फिर आवाम भी जो बैठी है उसको भी मज़ा इन्हीं की बातों से आ रहा है, वो थोड़ी बैठ के जो है एक मसलन बहरहाल एक शख्स जो उनको बता रहा है कि आप इस तरह जिंदगी करें या मसलन कोई अच्छी चीज़ बता रहा है तो वो मज़ा ही नहीं उसमें, तो फिर ऐसे हालात में करें तो करेंगे मीडिया क्या बेचारा करें।
देखिए मीडिया तो एक ज़ाबता अखलाक होना चाहिए,
अच्छा।
देखिए मसलन मैं आपको एक रिसेंटली एक मिसाल लूँ, ये जो उर्दन के पायलट को जो है इन्होंने दाएश वालों ने आग लगाई थी, अब ऐसी तस्वीरें या जो है मसलन दाएश वाले लोगों को ज़िबा करते हैं या जो दूसरे लोग हैं, तो अब ये चीज़ें जब आप अवाम में अवाम के सामने आप पेश करेंगे तो बाज़ जो कबाहतें होती हैं दीन के लिहाज से या अखलाकियात के लिहाज से जो हमारी जहन में बाज हुदूद हैं वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो टूट जाती है,
पर्दे उठ जाते हैं,
हाँ पर्दे उठ जाते हैं, और फिर ये है कि एक ज़ाबता अखलाक होना चाहिए मीडिया की, क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना है। इसमें जो है अफसोस की बात ये है कि बाज मीडिया जो है वो, जैसे मैंने फ्रेमिंग की बात की ना, वो अपने लिहाज से जो है चीज़ों को दिखाते हैं।
ठीक है,
मसलन यूरोप में बहुत से वाकयात होते हैं, वहाँ टेररिज्म भी होती है, एक दूसरे को लोग मारते हैं लेकिन एक खास वाकये को लेके उसको जो है उछालते हैं और कहते हैं कि मसलन तीन बंदों ने या दो बंदों ने आके, ये मुसलमान थे, इन्होंने मसलन फला जगह जो है जाके हमला किया, लेकिन कोई और अगर ये काम करे तो उसको जो है अहमियत ही नहीं आती। तो ये बात जो आपने की ये गलत है कि मीडिया क्या करे।
अच्छा।
मीडिया के पास ऑप्शन है और उनके पास जो है हक के इंतखाब जो है वो है, तो उनको ऐसी चीजें इंतखाब करनी चाहिए जो मुआशरे की तरक्की में और जो अखलाकियात हैं, हमारा तर्ज जिंदगी है, बोदबाश है, उनको बनाने में मुमिद और जो है मुआविन साबित हो, न कि जो है हमारे, देखिए इस वक्त जो मीडिया है उस, यानी उसका जो एक मुखरिब किरदार रहा है, जो बहुत ही उसने अवाम में और ख़ासकर बच्चों में बुराई फैलाई, वो ये है कि छोटे और बड़े की तमीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है।
अच्छा।
यानी पुराने ज़माने में एक पर्दा होता था नस्लों में,
ठीक है,
नस्लों में एक फासला होता था जो है ये छोटा है ये बड़ा है,
ठीक है,
अब वो जो है वो फासला खत्म हो गया है, वो चीजें जो है वो खत्म हो गई है,
ठीक है।
इसके अलावा बाज बहुत सी चीजों की जो कबाहतें थी हमारे जहन में वो खत्म हो रही है,
सब कुछ दिखाया जा रहा है,
सब कुछ दिखाया, मसलन यही तफरीही चीजें आपने कही कि जो है तफरी है, इसमें हर बंदा देख सकते हैं। अभी मसलन आप मगरबी मीडिया आप देखें, मसलन उसके अलावा जो है अब मुतासिफाना मसलन तुर्किया की जो है मीडिया है,
हाँ,
तो उनके जो ड्रामे हैं, उनके जो सीरियल हैं, वो सीधा हमारी उन अकदार पे जो है हमलावर है जो इस्लाम में या अखलाकियात में अभी तक हमारे मुआशरे में मौजूद थी। मसलन बिलफर्ज एक मिसाल मैं आपको दूँ, एक खातून का जो है, एक शादीशुदा खातून का कई अफराद के साथ मसलन ताल्लुक रखना, मेल जोल रखना, ये वो चीजें हैं जो इनकी कबाहतें ड्रामों के जरिए या सीरियल के जरिए अवाम में जो है इनकी कबाहतें खत्म हो रही है। तो देखें जो फरहंग है, हमारा कल्चर है, वो अफकार से बनता है, अफकार से बनता है, तर्ज फिक्र जब आप यूं दे रहे हैं तो जो हमारा आइंदा कल्चर बनेगा, जो हमारा मुआशरा बनेगा, वो तो फिर इसी नहज पे बनेगा, इसी रास्ते पे बनेगा। तो ये है कि जो चीज़ें आप दे रहे हैं उनमें एहतियात करें ताकि आइंदा जो है जो हमारा मुआशरा बने वो ऐसा मुआशरा ना हो कि हमारे हाथों में ना हो और इसे आप एक इस्लामी मुआशरा या अखलाकी मुआशरा ना कह सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल रहीम दुरानी साहब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप एक बुराई को देखते हैं और उस बुराई को दूसरे लोगों के लिए बताते हैं और बयान करते हैं तो ऐसा ही है जैसे आपने वो बुराई खुद की हो। तो ये वही बात है जो डॉक्टर अब्दुल रहीम दुरानी साहब ने कहा कि वो, जैसे फारसी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है हुरमत, कि वो जो पर्दे थे वो हटाए जा रहे हैं, और अगर एक मुल्क में पहले एक जगह पर कोई ऐसा गुनाह या कोई ऐसा गलत काम किया जाता था वो एक जगह पर किया जाता था, लेकिन मीडिया ने इतनी मदद की है कि इस गुनाह को फैलाने में कि अब हर बंदा सोचता है कि हाँ यार ये तो हो रहा है, मैं भी कर लूँ क्या, इसमें कोई बहुत, बहुत आम बात है, बड़ी चीज नहीं है।
याद है हम किसी के घर गए थे तो ये जो है वो सेटेलाइट पे चैनल आ रहे थे, मैंने कहा ये क्या दिखा रहे हैं आप
बच्चों को,
कहती ये तो बहुत मामूली चीज है, बहुत मामूली है, ये तो जो है आम चीज है। तो इसी तरह इक्तिसाद के हवाले से आप देखिए ये जो इश्तेहार आते हैं इनमें, ये अभी अंदरावी साहब ने जो बात की, बच्चे क्यों कोक पीते हैं,
बिल्कुल
इसलिए पीते हैं कि इस दिखाया गया है हीरो जो है वो कोक पी रहा है, उसके बाद जो है पहाड़ पे चढ़ रहा है
सिगरेट सुलगाई भी है उसके साथ पहाड़ पे चढ़।
हाँ बिल्कुल सही बात। तो ये है कि जो आप अवाम को दे रहे हैं उनमें जो है आप ऐसी चीजें दें कि खुदा ना खास्ता ये हमारा जो मुआशरा है वो आइंदा मुस्तकबिल में हमारे हाथ से ना निकल जाए।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अब्दुल रहीम दुरानी साहब सब गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्टर साहब जो है मेरे कान में जो है वो चीखना शुरू हो गए हैं, चलेंगे रुबाब के जी। रुबाब
बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपकी गुफ्तगू जारी रहेगी। मैंने प्रोग्राम के शुरू में नाज़रीन आपको बताया था कि आप अपने उंगलियों के जरिए अपने मूड या जज्बात या एहसास को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये एक जापानी तरीका है, इंसान के जिसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो है जज्बात एहसास जो है वो पाए जाते हैं और उसमें गुस्सा, नाराजगी, उदासी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपका अंगूठा जो है वो आपके घबराहट की जो है एहसास को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपकी शहादत की जो उंगली है वो आपके खौफ और डर के एहसास को कंट्रोल करती है। इसके अलावा आपकी बीच वाली जो उंगली होती है वो आपके गुस्से को जो है कंट्रोल करती है। इसके अलावा आपकी अंगूठी पहनने वाली जो अंगूठी होती है वो आपकी उदासी या नाराजगी को जो है उस एहसास को कंट्रोल करती है। और अब बात आती है हाथ की सबसे छोटी उंगली की, ये आपके स्ट्रेस को, या हम जैसे एंजाइटी और स्ट्रेस कहते हैं, उसको कंट्रोल करती है। आपने यहाँ क्या करना है नाज़रीन, आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने जो अपनी उंगली है जो मैंने आपको बताई है, ये तस्वीरें पता नहीं खैर खुल नहीं रही, कोई बात नहीं, खैर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जिस उंगली पे जो एहसास आपको उस वक्त फील हो रहा है, आप गुस्से में हैं, आप नाराज हैं, जो भी, उस उंगली को लेना है और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक उस उंगली को दबाए रखना है और उसके बाद उस उंगली को हल्का हल्का सा जो है मसाज देना है। इंशाल्लाह जो भी जज्बात आपके अंदर हैं, जब गुस्से में हैं, आप नाराज हैं, आप उदास हैं, जल्द ही उस एहसास में आपको बहुत आराम मिलेगा। ये एक जापानी तरीका है और इस बार मैं पढ़ रही थी और इस तरीके से बहुत से लोगों ने, यानी जो वहां पे कमेंट्स लिखे थे, लिखा था कि उन्हें काफी हद तक जो है आराम मिला है। आप भी कोशिश कीजिए, देखिए क्या होता है। खैर नाज़रीन, यहां लेके एक मुख्तसर सा वक्फा और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी मोहतरम नाज़रीन, फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर चलूंगी खुरम की तरफ ताकि अपनी गुफ्तगू को जारी रख सके। जी
बहुत शुक्रिया रुबाब जी, बिल्कुल डॉक्टर अब्दुल रहीम दुरान साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी गुफ्तगू चल रही है मीडिया के किरदार के बारे में हमारे माशरे में। डॉक्टर साहब आपने बात की कि खूब मीडिया का बहुत अहम रोल है,
जी जी,
और आपने कहा कि ये कह देना कि नहीं मीडिया के हाथ में नहीं है ये चीजें, ऐसा नहीं है, मीडिया का, मीडिया फ्रेम करता है, मीडिया इंतखाब करता है, मीडिया बनाता है, मीडिया तोड़ता है। आपके ख्याल में डॉक्टर साहब सिर्फ मीडिया ही ये काम कर रहा है या कुछ और अवामिल भी हैं? कहने का मतलब ये है कि शायद हुकूमतें शामिल हैं इसमें, क्या इसमें इक्तसादी मामलात या मुश्किलात शामिल हैं या मीडिया खुद बैठ के सारा कुछ कर रहा
है? ये तो इसमें मुख्तलिफ अवामिल हैं, देखिए इसमें सियासी अवामिल हैं, इसमें जो है इक्तसादी अवामिल हैं, जो हर जो है कौम है या जो बाज़ हुकूमतें हैं वो अपनी सियासी लिहाज से बाज़ खबरें देते हैं। इसमें जो है मगरिब और मशरिक के आपस में टक्कर की बात है, इसमें जो है इक्तसादी लिहाज से वो है, इसमें तमद्दनों के टक्कर की बात है, तो ये सारी चीज़ें हैं, अवामिल तो बहुत हैं, हमें क्या करना चाहिए? ये अहम बात यह है कि देखिए जो हुकूमतों पे हमें ज़्यादा उस तरह से भरोसा नहीं रखना चाहिए, हमें खुद जो है बात चीज़ें मैं बताता हूँ, टाइम भी नहीं है आप लोगों के पास, लेकिन ये है कि देखिए सबसे पहले जो हमारी छोटी नस्ल है, बच्चे हैं, वो हमारे आइंदा के जो है सरमाया है, अगर आप उनको कंट्रोल करें तो आइंदा नस्ल हमारी जो है वो सही रहेगी,
समझी हुई होगी।
देखिए आप घर में कंट्रोल रखें, जो घराने का सिस्टम है जिसपे हमेशा ताकीद रही है, बच्चों की टाइमिंग आप वो करें, किस वक्त फेसबुक पे बैठना है, किस वक्त टीवी पे बैठना है, इसके अलावा जो है एक यानी खुद आप घर में भी एक फ्रेमवर्क बनाएं,
समझाएं बच्चों को,
हाँ कौन से चैनल बड़ों के हैं, कौन से चैनल जो है वो छोटे बच्चों के हैं, इनको क्या देखना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए, और बच्चों के जो आपस में इरतबातात हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं, उन पे जो है बड़ों को कंट्रोल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इस दुनिया में जो बहुत मसरूफ है वो ये है कि बच्चों को टाइम दें, आप अपने बच्चों को टाइम दें, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो उसका टाइम कोई और लेगा, और वो फिर अपनी तर्ज पे उसको उसकी नशोनमा करेगा, तो आप जो है उसको टाइम दें, ये टाइम बहुत है, यानी सारे मसाइल की जो है वो यही है कि आप उसको टाइम दें और उसको समझाएं तो उसके खेल में आप मशगूल हो जाए उसके साथ।
हाँ तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल रहीम दुरान साहब, माजर के साथ वक्त बिल्कुल हमारा खत्म हो गया, जी चार साहब से गुफ्तगू की जाए लेकिन वक्त बहुत कम है हमारे पास, हमने खुदाफिजी भी करनी है, अपने नाज़रीन से शुक्रिया अदा करता हूँ, इंशाल्लाह जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, चलते हैं रुबाब का, जी रुबाब
बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका भी और मोहतरम अब्दुल रहीम दुरानी साहब का भी, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमेशा वो यहाँ आते हैं और बहुत ही अहम और मुफीद नुकात की तरफ वो इशारा करते हैं। खैर नाज़रीन, यहाँ हम साथ में कर लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और जल्दी से हम अपने अगले हफ्ते के मौजू के बारे में नाज़रीन को खुलम बताते चलते हैं। इंशाल्लाह हमारे अगले हफ्ते का मौजू रहेगा जिंदगी में रोल मॉडल की जरूरत,
बड़ा अहम मौजू है
बिल्कुल,
और शायद बहुत कम आप लोगों ने ये बात सुनी हो कि रोल मॉडल की जरूरत, रोल मॉडल है क्या, रोल मॉडल की क्या जरूरत है, लेकिन मेरे ख्याल में अब तक प्रोग्राम नसीम जिंदगी में इससे अहम मौजू हमने नहीं चलाया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आजकल खासकर के ज़माने में जहाँ पर मीडिया मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको मुख्तलिफ रस्तों की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर जब तक आपका रोल मॉडल नहीं होगा تو زندگی گزارنا, صحیح زندگی گزارنا بہت مشکل.
بالکل, بہت شکریہ.
اسی سے میں اکثر بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ ذوالفقار علی صاحب ہوں گے, پی ایچ ڈی فیلو ہیں دہرادون یونیورسٹی, اور وہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے ایک ادبی شخصیت کے بارے میں. ہم نے ایک نیا سلسلہ چلایا ان کے ساتھ, اور وہ سنیچر کے دن ہمارے ساتھ ادبی شخصیت جو جس کا تعلق پاکستان, ہندوستان, ایران سے ہو, اس کے بارے میں گفتگو کریں گے.
اور ان شاء اللہ آسٹریلیا سے ہمیں نکہت نسیم صاحبہ بھی جوائن کرے گی, اور دیکھیں گے وہ کس موضوع پہ, ہمارے ہفتے کے موضوع پہ بات کریں گے ان شاء اللہ. ناظرین, اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے پروگرام نسیم زندگی سے. میں رباب منصوری اور خلم علی گردیزیہ سے خدا پسی چاہتے ہیں. خدا حافظ.